ஓம் சிவாய நம. டியர் லிசனர்ஸ் ஆஃப் சைவம் டாட் ஆர், தி நெக்ஸ்ட் ப்ரோக்ராம் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்கோர்ஸ். இன் திஸ் யுவர் அபவுட் டு லிசன் முண்டகோபனிஷத், பிரசன்டட் பை சுவாமி ஸ்ரீ சிவ் சரூப்ஜி மகாராஜ். தேங்க்யூ. ஓம் நம சிவாய.
பரம் பிரேமாஸ்பத் பரமாத்மஸ்வரூப் முண்டக தூசரே மே கர்ம பதாயா கயா, कर्म का विवेचन किया गया. पहले सृष्टि फिर कर्म. तो सृष्टि और कर्म दोनों शाखाएं की गई, एक पातनी शाखा एक पावनी शाखा. तो पातनी शाखा अशुभ कर्म करने से, अशुभ कर्म किए जाए जैसे जुआ खेला जाए, ये पतन की ओर ले जाता है. तो पातनी शाखा का मतलब पतन की ओर जाना, पावनी माने पवित्र कर देना. दो प्रकार के कर्म होते हैं. कर्म में फल चाहिए. कर्म अगर सकाम कर्म कहा जाए तो भी अंतःकरण शुद्ध हो सकता है यदि फल की इच्छा न हो. तो पातनी शाखा जो है वो पतन की ओर ले जाती है. कर्म स्वतंत्र होता है, कर्ता चाहे करे चाहे न करे, चाहे पातनी की ओर चाहे जाए पावनी की ओर जाए, ये उसकी मौज है. लेकिन ज्ञान शुद्ध वस्तु है. कर्म साध्य है तो सिद्ध वस्तु है. पत्थर को पत्थर ही बताएगी, जो जैसा होगा वैसे ही बताएगा ज्ञान. लेकिन कर्म किया जा सकता है. कर्म 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 कर्ता के अधीन है. कर्ता जैसा चाहे वैसा करे या वैसे न करे, संध्या वंदन करे चाहे न करे, जुआ खेले चाहे न खेले, तो उसके ऊपर है. और कर्म फल चाहता है, फल जो हो उसका. जैसे यज्ञ करो पुत्रेश यज्ञ, तो पुत्र चाहिए, स्वर्ग आदि चाहिए. स्वर्ग के लिए अगर करे तो जो कर्म कर्ता के अधीन है, कर्ता करे चाहे न करे, या करे तो पातनी करे या पावनी करे, जैसा उसका मन आवे वैसा करे. कर्म फल की इच्छा रखता है, ज्ञान नहीं रहता है. ज्ञान में तो सिद्ध वस्तु है, जो जैसी तैसी रहेगी. इसलिए कर्म स्वतंत्र है, कर्ता के अधीन है. चाहे वो सुबह करे चाहे शाम को करे चाहे दोपहर करे, ये उसके अधीन है कर्म. कर्म फल देता है तो फल कैसा देता है, जैसा किया जाएगा वैसा. जैसा पुत्र से यज्ञ करा जाएगा तो पुत्र मिलेगा, और वैसा यज्ञ करेगा तो वैसा मिलेगा. जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा. लेकिन ज्ञान ऐसी चीज नहीं है. जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, ऐसी बात नहीं. ज्ञान तो जैसा पूर्व है पश्चिम है तैसा है. पूर्व ही तरम पूर्व तरम कृतम, पूर्व ही पूर्व तरम कृतम. कर्म आचार्य के अनुसार होता है. जैसा हमारे पूर्वजों ने किया वैसे ही कर रहे हैं. लेकिन ज्ञान ऐसी बात नहीं है, सिद्ध वस्तु है, जैसी की तैसी रहती है. पूर्व ही पूर्व तरम कृतम आचार्य परंपरा से नहीं है, न गुरु परंपरा से है. ये ज्ञान गुरु परंपरा से है और ये आचरण परंपरा से है, पूर्वजों के आधार पर. सदाचरण क्रिया, जैसे सदाचरण है तो ब्राह्मण को चाहिए सदा आचरण करे, छत्री में चरण करे तो सदा रण में चरण करे, सदा चरण रण, रण हमेशा देखना चाहिए युद्ध भूमि, वैश्य करे तो सदा चारण, सदा चारण माने वस्तु इधर की उधर उधर की इधर करे, शुद्ध करे सदा चरण रत, चरण सेवा करना चाहिए। ऐसे ही वानप्रस्थ गृहस्थ और लगा ले ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य सदाचरण, सदाचरण गुरु के चरण रत में रहा है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ सदाचारी होए, सदाचरण रत, और वानप्रस्थ सदा चरण रत, हमेशा अपने साधन में मगन रहा है, और शूद्र सदा चरणरत ही चारों आश्रमों में चारों अवस्थाओं में बीत गया। तो ऐसे आचरण के ऊपर ये होता है, आचरण से चरण की महिमा होती है। अगर आचरण नहीं है, गलत है आचरण, तो ठीक नहीं है। तो ये कर्म की बात है। पात्नी और पावनी शाखा दो हैं, पहले सृष्टि का वर्णन किया है, थोड़ा नाभि सृष्टि गणते च ओषधया संभवंती पृथ्वीया, पृथ्वी से जैसे मकड़ी के जाला, तो बताया उपादान निमित्त कारण प्रत्यक्ष बताया। प्रत्यक्ष कारण क्यों नहीं है का, प्रत्यक्ष ब्रह्म दिखाई नहीं देता है, वो तो सबका प्रकाश करने वाला है, वो देखे कैसे। और फिर बताया निमित्त कारण मान लो, तो कुम्हार घड़ा बना के अलग रख देता है, तो घड़ा फूटे या कुम्हार मरे घड़ा को कुछ मतलब नहीं, मिट्टी से वो बनाए देता है बस, तो निमित्त कारण भी नहीं हो सकता। ऐसा तो ब्रह्म है नहीं जो जगत बना के अलग हो जाए, जैसे घड़ा बना के कुमार अलग हो जाता है, तो निमित्त उपादान हो जाए। तो कहा कि यथोर नाभि सृते गणते च, उर नाभि बनाती जरूर है लेकिन तो जड़ है, दृश्य है, तो फिर कैसे बने। तो बताए कि अभिन्न निमित्त उपादान कारण बनाओ, माने माया, माया उसकी रचती है और ब्रह्म उसका निमित्त कारण होता है। उपादान माया है, निमित्त ईश्वर है चेतन। जैसे निमित्त कुम्हार हमेशा चेतन होता है, चाहे जो कुछ करे चेतन ब्रह्म रहेगा, निमित्त निमित्त कारण चेतन रहता है, उपादान कारण जड़ रहता है। तो उपादान माया हो गई, निमित्त चेतन हो गया ईश्वर। तो प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में बताई चुके, सुनाई नहीं, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, सुंघाई नहीं देता, उसमें इंद्रियां नहीं है, अंतःकरण भी नहीं है, तो कैसे काम चलाता है। कैसे अंतःकरण का होना जरूरी थोड़ी है, भगवान के अंतःकरण नहीं है, बताते नहीं है कि अंतःकरण उसके नहीं है। तुम रख लो प्रेम, प्रेम जिसमें रहा है वो नहीं है उसके अंतःकरण। तो प्रत्यक्ष अनुमान, अनुमान से परमात्मा जैसे नैयायिक लोग कहते हैं, निमित्त होगा अगर होगा, वो उनका कहना ये है कि इतना सुंदर घड़ा बनाया तो कुम्हार निमित्त हो गया, ऐसे इतनी सुंदर दुनिया बनाई कोई न कोई निमित्त होगा जरूर, तो निमित्त कारण मानते हो, और पंगुवंदन न्याय मानते हैं सांख लोग, एक लंगड़ा है एक अंधी है प्रकृति। प्रकृति कहती है लंगड़े के ऊपर बैठ जाती है, लंगड़ा बैठ जाता है प्रकृति के ऊपर और लंगड़ा बताता जाता है रास्ता चली जाती, ऐसे सृष्टि बनती है पंगुवंदन न्याय। वो कहते हैं, उनका कहना ये है प्रकृति सत्य है नित्य है। प्रकृति जब नित्य है तो पुरुष बहुत्तम सिद्धम में सांख में यही दोष आ गया, बहुत पुरुष मान लिए, बहुत पुरुष मान लिए और बहुत सी शाखाएं और प्रशाखाएं और प्रमाण भी मान लिए बहुत से, तो ये सांख में दोष हो गया। योग बहुत कुछ आगे चला, समाधि में तो निर्विकल समाधि में तो ज्ञान हो गया, तो अविद्या निवृत्त होनी चाहिए, चाहे निर्विकल्प हो चाहे सविकल्प हो, अविद्या निवृत्त हो अज्ञान दूर होना चाहिए। हमारे गले में माला पड़ी है, हमको मालूम होना चाहिए किसी प्रकार से, चाहे समाधि से हो चाहे गैर समाधि से हो, चाहे निर्विकल्प ज्ञान हो चाहे सविकल्प ज्ञान हो, हमें तो अविद्या हटानी है। किसी तरह से अविद्या हट जाए, अज्ञान हट जाए, बस काम बन जाए, वो चाहे निर्विकल्प हो चाहे सविकल्प ज्ञान कैसे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्विकल्प या सविकल्प ज्ञान से मतलब नहीं है, समाधि चाहे जैसी हो ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए और एकता का होना चाहिए। जैसे आत्मा अलग अगर रहेगा ब्रह्म से तो अलग कटा फटा रहेगा, अलग बना रहा है ब्रह्म से एक होगा, ब्रह्म अगर अलग रहेगा तो परोक्ष रहेगा, ब्रह्म को किसी ने देखा तो है नहीं। एक हमारे अध्यापक थे परमार्थ निकेतन में, वो कहने लगे ब्रह्म होता तो किसी को तो दिखता, हमें नहीं दिखता सही, किसी को तो दिखना चाहिए था। अरे वो तो प्रकाश है, देखे चाहे देखे, इंद्रियों को प्रकाशित करता है, यही उसका काम है। आंख देखती है इसका मतलब है रोशनी है जरूर, और रोशनी उसी का है, प्रकाश उसी का है, प्रकाश और विकास दोनों उसी के हैं। तो ये जिद नहीं करना चाहिए दिखा जाए, देखा जाए जो दिखनी देखी चीज तो गलत होती है। रस्सी में सांप दिख रहा है भ्रांति के समय में दिखता है, रस्सी में सांप जो दिखता है वो भ्रांत अवस्था में दिखता है, अच्छी अवस्था में थोड़ी दिखता है। आप स्वस्थ होकर के और रस्सी में सांप थोड़ी देखेंगे, रस्सी ही देखेंगे। तो अधिष्ठान ज्ञान से माने अविद्या निवृत्त होती है, अधिष्ठान ज्ञान से। जैसे रस्सी में सांप दिखता है तो रस्सी का ज्ञान होना चाहिए, रस्सी है रस्सी ही है, अरे भ्रांत में हमें दिख गए थे सर्प। तो जिस समय आप सर्प दिखाई देता है उसमें भी सोचना चाहिए रस्सी ही है, ये अगर विचार रहेगा तो काम बनेगा। क्यों? अधिष्ठान ज्ञान से भ्रम दूर होता है और अविद्या निवृत्त होती है। अज्ञान जो हमारे भीतर है कि रस्सी में सांप दिख रहा है और हम भाग रहे हैं और लाइट दिखाई, जैसे टीवी में लाइट पे तो सबका प्रकाश आकृति में तो आकर्षण होता है, सो देखते हैं ऐसा सुंदर है, ऐसा है सुंदर है, असुंदर है, जैसा देखते हैं। लेकिन ये विचार नहीं करते अगर बिजली न होए तो टीवी चलेगी, बिजली जरा देर के लिए चली जाती है टीवी बंद हो जाती है, तो प्रकाश पर ध्यान नहीं रहता है, टीवी पर ध्यान रहता है। आकारों में इतना आकर्षण होता है, आकारों में आकर्षण देख करके वो व्यक्ति आकर्षण देखता है, समझता है, बूझता है, लेकिन बिजली है, बिजली से चल रहा है, देखता ही नहीं। ऐसे तुलसी महाराज मंदिर काशी में सुग्रीव और बाली की लड़ाई होती है, तो लड़ाई तो लोग देखने लगते हैं, बिजली पीछे है वो ध्यान ही नहीं जाता। अरे बिजली मीरा के गाने गवाती है और बिजली लड़ाती है, तो बिजली का ध्यान जैसे नहीं रहता ऐसे ध्यान भ्रांत अवस्था में अधिष्ठान पर नहीं रहता है। अधिष्ठान रस्सी है, वहां वहां सर्प ब्रह्म है ही नहीं, सर्प ब्रह्म है ही नहीं, सर्प कोई है ही नहीं। तो पातनी और पावनी शाखा दो शाखाएं होती हैं, और कर्म और पहले सृष्टि का वर्णन किया, कर्म विवेचन किया, इस दूसरे मुंडे में हो मुंडक में। अब स्वामी जी बोलेंगे।
कल आप सुन रहे थे कि लोक की परीक्षा करके क्या परीक्षा इसकी करना है कि ये ऋग्वेद आदि से होने वाले जो कर्म है वे कर्म जो अविद्या से युक्त हैं, जिनके जीवन में कामना है, उन्हीं के लिए कर्म का वर्णन है। तो ये इन कर्मों के द्वारा जो वस्तु प्राप्त होगी, परिस्थिति प्राप्त होगी या लोक लोकांतर की प्राप्ति होती है, वे सब नश्वर होते हैं, ये पीछे के मंत्रों में बताया है। और विधि निषेध का भी दोष रहता है इनके साथ में। विधि यदि विधि पूर्वक हुआ कर्म तो आपको स्वर्ग ले जाएगा, और यदि विधि नहीं हुई तो आपने सुना है कि 7 पीढ़ियां उसकी नष्ट हो जाती हैं। और इसमें निषिद्ध भी कर्म है, तो जितने भी ये कर्म हैं और या इसके फल हैं, उन फलों में यही दोष है नश्वरता का। और कर्म में दोष यह है कि वैगुण्य हुआ तो उसमें हमें हमारे 7 कुलों का नाश होता है, और यदि सही कर्म हो गया और प्राप्त हो गया स्वर्ग तो उसका भी नाश होता है, स्वर्ग भी नष्ट हो जाता है। तो प्रत्यक्ष अनुमान और उपमान और आगम इन 4 प्रमाणों से ये निश्चय करके और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्योंकि जितना हम प्रयास करते हैं नश्वर वस्तु के लिए, उससे कहीं थोड़ा सा भी प्रयास करें, उससे भी कहीं कम प्रयास करें, आधा भी प्रयास करें, चौथाई भी परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयास करें, तो हमारे प्रयोजन की सिद्धि हो सकती है। जिस सुख के लिए हम अनादिकाल से प्रयत्न कर रहे हैं, वह सुख अनादिकाल से प्रयत्न करने पर भी अभी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं हुआ, उस सुख का स्टोर नहीं हुआ। व्यक्ति की जिंदगी में जो दुख है वह सीमाओं का दुख है, सीमाएं कर्म से प्राप्त होने वाली वस्तुओं की सीमा होती है, देश की भी सीमा होती है, काल की सीमा होती है, और वस्तु स्वयं सीमित होती है। और आप चाहते हैं असीम वस्तु को, और असीम सिर्फ परमात्मा है, सदरूप चिद्रूप आनंद रूप परमात्मा है। हम थोड़े से जीवन से संतुष्ट नहीं है, 5, 10, 50 वर्ष के जीवन से हमें संतोष नहीं है। हम अपनी सत्ता के प्रेमी हैं, हमारी सत्ता का कभी विनाश न होए, हम सदा बने रहें, इस प्रकार की चाह व्यक्ति के जीवन में है, इस प्रकार की मांग व्यक्ति के जीवन में है, इस प्रकार की इच्छा व्यक्ति के जीवन में है कि हम सदा बने रहें, मरे नहीं, मरे नहीं। और इसी प्रकार से आपके जीवन में जो ज्ञान की सीमा है वो भी आपको पसंद नहीं है, सत्ता सीमित है आपकी, 50 वर्ष की है, ज्ञान भी आपका सीमित है, वह भी आपका अधूरा ही ज्ञान है, आप स्वयं इसका अनुभव करते हैं, इससे आप संतुष्ट नहीं है, सीमित ज्ञान से भी संतुष्ट नहीं है। हमने एक ही कोर्स किया है, एक ही विषय के पंडित हैं, एक ही विषय समझते हैं, इससे संतोष किसी को नहीं है। आप देखिए डॉक्टर करते हैं, पहले डॉक्टर ही करते थे, अब तो एक एक आंख नाक कान के विशेषज्ञ होते हैं, उसमें भी वो अपने को अधूरा ज्ञान में अधूरापन महसूस करते हैं, मजबूरी होती है जो फिर है उन्हें दुनिया में लगना पड़ता है। इसी प्रकार से हमको सीमित सुख में संतोष नहीं है, हम घर में सुखी रहें यहां सुखी न रहें, यहां सुखी रहें घर में भी घर में सुखी न रहें, यह परिच्छिन्न आनंद भी हमको पसंद नहीं है, न परिच्छिन्न सत्ता पसंद है, न परिच्छिन्न आपको चित्ता पसंद है, न परिच्छिन्न आपको आनंद पसंद है। तो ये हमारी जीवन में जो दुख हैं वो सब सीमाओं का है, कर्म से जो भी मिलेगा वो सब सीमित होगा, असीम नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य के सामर्थ्य ही असीम नहीं है, जो वो असीम है फल को प्रकट कर ले, वह असीम सुख को प्रकट कर ले, वह इतना उसके पास सामर्थ्य नहीं है। एक बात और है कि ये दुनिया जो कर्म से प्राप्त होती है वो स्वयं सीमित ही है, चाहे वो 3 लोक हो चाहे 14 भुवन हो, ये सब के सब सीमित हैं, और नहीं तो प्रलय में तो इनका नाश हो ही जाएगा। इसलिए ऐसा विचार करके कि सारी वस्तुएं संसार की परिच्छिन्न हैं, और परिच्छिन्नता हमें पसंद नहीं है, हमें निर्बाध हमें अपरिच्छिन्न तत्व की प्राप्ति होनी चाहिए। तो जो व्यक्ति प्रयत्न से करेगा वो बोलते हैं कि पहले लोक में देखिए, परिच्छ लोकान कर्मचितान, माने यहां आप अपने अनुभव में देखिए, अपनी आंख से देखिए, विचार करिए, लोक में ही देख लीजिए, जो व्यक्ति की पुरुषार्थ से मिलती है वह व्यक्ति जैसे होती है, व्यक्ति का पुरुषार्थ असीम नहीं हो सकता है, इसी प्रकार से उसके प्रयत्न से पुरुषार्थ से जो वस्तु मिलेगी वो भी असीम नहीं हो सकती है। जो असीम नहीं होगी वह दुख देगी, उससे आप दुखी हो जाएंगे, क्योंकि आप सुख की प्राप्ति के लिए जिस कर्म से, जिस वस्तु का, जिस प्रतिष्ठा का, जिस पद का, जिस पैसा का निर्माण किए हैं, वो सब काल के गाल में पड़े हुए हैं, सब सीमित हैं। अच्छा, किसी व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति रेगिस्तान में जा रहा है और 2-4 किलो पानी लेके जा रहा है, यदि आप उससे मांगे कि भाई हमको प्यास लगी है पानी दे दो, तो 1 किलो आपको दे देगा, 2 किलो दे देगा, चलो पूरा ही दे देगा। तो आपको उस जल से संतोष तो नहीं होगा। देखिए, गंगा का किनारा है, गंगा के किनारे रहने वाले लोग हैं, और आप ये नहीं बता सकते हो, यद्यपि गंगा की उत्पत्ति का वर्णन है, पर वो परमात्मा की कृपा से प्राप्त है। जो गंगा वसीम है, कुंभ के मेले में लाखों लोग स्नान करेंगे, और फिर भी गंगा वैसे की वैसे रहेगी, यमुना का जल वैसे का वैसे रहेगा। और यदि आप एक बाल्टी पानी के लिए कोई स्नान के लिए पानी दे देवे, तो आपकी गंदगी तो दूर कर देगा, लेकिन वो पानी स्वयं गंदा हो जाएगा। तो जो सीमित वस्तु होती है, उसके पीछे इसी प्रकार की विपत्ति लगी रहती है। ऐसा समझ करके कहते हैं कि निर्वेद व्यक्ति को दुनिया से उत्पन्न होना चाहिए। निर्वेद माने वैराग्य होना चाहिए, वैराग्य।